तो लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब मतलब रिलैक्सेशन वाला जॉब, आप आराम से अपने सारे काम कर सकते हो।
सरकारी नौकरी कह करके लोग एक ही डंडे से सबको हक देते हैं।
प्रेशर बहुत होता है,
बहुत काम का सेशन में जो संसद का सत्र चल रहा होता है बहुत अधिक प्रेशर होता है।
लोगों को कितना कितना समय दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का अक्सर ये कंप्लेन होता है कि अपोजिशन वाली पार्टी मुझे बोलने का मौका नहीं देती है। जनरली देखा जाता है सर कि अगर कोई बोलना चाह रहा है, लाइक मैं अमित शाह जी का ही मतलब देख रही थी, तो वो अपनी बातें रख रहे थे लेकिन अपोजिशन वाले बीच में बहुत हल्ला मचा रहे थे।
इसमें भाई आजकल की भाग दौड़ की जो जीवन शैली है ना
जी,
ये उसका परिणाम है।
सब कुछ जल्दी में होना चाहिए
कि हमारे पास धैर्य बहुत कम हो गया। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्म में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में करता हूँ।
हरे कृष्णा दोस्तों, यूं तो लोकसभा में कई बार आपने टीवी पर बिल को लेके बहस होते हुए देखा होगा, कई सारी न्यूज देखी होगी, नहीं उसके पीछे की ड्राफ्टिंग कैसी होती है, उसके पीछे काम कैसा होता है, तो आज ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज हमारे साथ पार्लियामेंट के सचिवालय में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत उपेंद्र नाथ जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो हमें पर्दे के पीछे की सारी कहानी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
जी थैंक यू सर। तो पार्लियामेंट में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे आप कार्यरत हैं, तो आपकी वहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है?
देखिए मैं वहाँ बेसिकली मेरा आधारभूत रूप से मेरा भाषा का काम है
जी।
तो जो आप लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ देखते हैं
जी,
तो प्रायः 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है, तो उसमें जो अध्यक्ष महोदय हैं स्पीकर साहब, वो अनाउंसमेंट करते हैं, फिर प्रश्नकाल होता है, उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न है। तो मैं अभी जिस शाखा में हूँ, कई सारी शाखाएं हैं, तो पार्लियामेंट्री पेपर्स उस शाखा का नाम है संसदीय पत्र शाखा। तो जैसा कि नाम से ही बिल्कुल सुस्पष्ट है कि जो पार्लियामेंट में कई तरह के जो पेपर्स हैं जो बिल्कुल संसद की कार्रवाई से सीधे संबंधित हैं, उनके ट्रांसलेशन, उनके द्विभाषिक होने का सारा काम देखता हूं, और भी हमारे कई सारे साथी हैं वो भी देखते हैं। तो हम लोग आमतौर पे कई सारी जिम्मेदारियों को रोटेट करके करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें उसके सारे आयामों का एक्सपर्ट होना पड़ता है।
तो भाषा मतलब क्या ट्रांसलेशन करते हैं सर आप लोग?
हाँ ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, और उसको मेनली मेरा काम तो ट्रांसलेशन किए हुए को एडिट करना होता है, उसको और उपयुक्त बनाना होता है,
रिफाइन करना होता है, ड्राफ्ट करना होता है।
हाँ उसको, और कई बार हम लोग ओरिजिनली भी मूल रूप से भी ड्राफ्ट करते हैं।
ओके।
कभी कभी
ओरिजिनली मूल रूप से मतलब आप लोग पूरा 100% आप लोग रेडी करते हैं कि वहाँ पे क्या बोला जाएगा?
हाँ नहीं, वहाँ से स्पीकर ऑफिस से और वहाँ से जो रिक्वायरमेंट आती है कि स्पीकर साहब को इसके बारे में बोलना है
जी,
तो कुछ एक ड्राफ्ट बना दीजिए। आमतौर पे उधर से इंग्लिश में ड्राफ्ट बन के आता है, उसकी हम लोग हिंदी करते हैं। कई बार हिंदी भी आती है तो उसकी इंग्लिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं अरे आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल अनुवाद के बजाय बिल्कुल हिंदी में बनाइए, जो लगे कि मूल हिंदी भाषा में एकदम, मतलब उसमें अनुवाद की कहीं भी कोई झलक ना मिले।
ठीक है।
देखिए अनुवाद ऐसा है कि भाषा का में जब हम किसी टेक्स्ट का, किसी पाठ का जब हम अनुवाद करते हैं, तो चाहे हम लाख कोशिश कर लें, अनुवाद की कहीं ना कहीं उसमें झलक आ जाती है।
राइट।
जो अनुभवी लोग होते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उनको पूरे टेक्स्ट पढ़ने के बाद लग जाएगा कि अच्छा ये ओरिजिनल नहीं है, अनुवाद है
जी।
चाहे हमने उसको
कितना भी आप
कई बार उसको संपादित किया हो, कि अनुवाद की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अनुवाद न लगे।
तो बेसिकली उनके हाथ में जो उस टाइम पेपर्स होते हैं बहस के दौरान, वो सारा रेडी आप लोग करते हैं, चाहे आप ओरिजिनल करो या ड्राफ्टिंग करके दो।
हाँ हम लोग जैसे अनाउंसमेंट हुआ, स्पीकर साहब जैसे कोई अनाउंसमेंट करते हैं कि मान लीजिए किन्हीं संसद सदस्य का या पूर्व संसद सदस्य का देहांत हो गया, तो जब कार्यवाही शुरू होती है तो सबसे पहले उनके बारे में स्पीकर साहब उद्घोषणा करते हैं
जी।
कि अत्यंत दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि हमारे ये जो उनका नाम ये और जो 10वीं लोकसभा 15वीं लोकसभा जो भी हो इस लोकसभा के सदस्य रहे
वो अब हमारे बीच
तो अब हमारे बीच नहीं है, तो अब हम लोग उनकी याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन रहेंगे। तो इस तरह से करके फिर उसके बाद प्रश्नकाल शुरू होता है
जी।
तो प्रश्नकाल में मूलतः 2 तरह के प्रश्न होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं, हिंदी में उनको तारांकित प्रश्न कहते हैं, वो होते हैं जिनको आप कार्यवाही में देखते हैं, जिनको मेंबर स्वयं सभा में पूछते हैं और वो 20 उनकी संख्या 20 फिक्स होती है और मंत्री महोदय स्वयं वहाँ पे जवाब देते हैं
जी।
सामने और उस पर कई बार ऐसा होता है कि उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अनुपूरक प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि उसका कोई पहलू लगा संसद सदस्य को कि हाँ अच्छा ये क्लियर नहीं हुआ, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कीजिए। अच्छा अच्छा तो उसमें ये होता है कि तारांकित प्रश्न जो है वो सीधे संसद सदस्य पूछते हैं
जी।
और मंत्री महोदय सीधे जवाब देते हैं। तो कभी 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 अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री, प्रतिपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछना होता है।
तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं सर, ये आप लोग रेडी करते हैं?
नहीं नहीं, क्वेश्चंस क्वेश्चन ब्रांच अलग है।
ठीक है,
हम लोग कभी कभी उनका अनुवाद करते हैं।
तो क्वेश्चंस भी जो ब्रांच अलग आप बता रहे, तो वो क्वेश्चंस रेडी करना उनके जिम्मे है?
जी जी।
तो उन्हें बता दिया जाता होगा, कुछ आइडिया दिया जाता होगा कि इस टाइप की आपको रेडी करके देनी है? तो उसके
नहीं, मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं
जी।
मेंबर खुद जो है अपने पीए के द्वारा क्वेश्चन ब्रांच में देते हैं।
ओके।
क्वेश्चन ब्रांच का काम क्या होता है कि मेंबर को कई बार संसदीय प्रक्रियाओं की उतनी जानकारी नहीं होती
जी,
शैली की जानकारी नहीं होती, उनको सब्जेक्ट की जानकारी होती है कि इस विषय पर मुझे सवाल पूछना है, लेकिन वो किस शैली में किस स्टाइल में पूछा जाएगा
जी।
तो उसको प्रश्न शाखा वाले उस शैली में उसको बनाते हैं, मूल बात वही रहती है, उसको बनाते हैं, उसमें जो प्रॉपर एक ढर्रा है एक पैटर्न है उस पर बनाते हैं। तो उस पर क्या करते हैं कि एक बना लिया, उसमें थोड़ा सा एडिशन अल्ट्रेशन भी करते हैं, उससे रिलेटेड यदि कोई रिलेवेंट चीज़ उनको लगती है
जी जी।
तो वो भी कर देते हैं, उसके बाद वो हमारे पास अनुवाद के लिए आता है। तो कई बार मेंबर्स जो जैसे मूल हिंदी में उन्होंने दिया क्वेश्चन तो उसकी अंग्रेजी हम लोग करते हैं, कई बार अंग्रेजी में दिया तो उसकी हिंदी हम लोग करते हैं।
मतलब बेसिकली सारे लैंग्वेजेस पे वहाँ पे काम होता
है। हाँ, मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में
जी,
क्योंकि रीजनल लैंग्वेज वाले एमपीज हैं उनको भी क्वेश्चंस इसी दोनों में से देने होते हैं।
ओके। तो कई बार ऐसे लैंग्वेज लेके बैरियर हुआ है एमपीज के बीच में, मतलब आप लोगों ने कुछ ट्रांसलेट करा या उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो लैंग्वेज का भी बैरियर बना है सर?
नहीं, ये कभी कभी ऐसा होता है जो संसद सदस्य महोदय की तरफ से जो ड्राफ्ट आता है क्वेश्चन का
जी,
उसमें कुछ एक शब्द स्पष्ट नहीं होते या थोड़े गलत भी होते हैं
जी।
तो एक तो जिनके पास क्वेश्चन गया मूल जो शाखा है वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनको देखने में दिक्कत होती है, उनको फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ये उन्होंने लिखा है, तो फिर वो संदर्भ से पता लगाते हैं कि चूंकि इस संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है तो शायद ये शब्द होगा इसके बजाय जो लिखा हुआ उसके बजाय ये शब्द होगा। कई बार स्थान के नाम भी क्लियर नहीं होते तो संदर्भ से हम लोग को पूछ करके कई बार रिसर्च करके क्लियर करना होता है
जी। तो कभी ऐसी कुछ चीजें हुई कि कुछ मिस्टेक हो गया हो, ह्यूज मिस्टेक हो गया हो कुछ?
कभी कभी मतलब छोटी सी गलती हो जाती है संसद सदस्य के नाम में
जी,
हालांकि पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आजकल जो है फॉन्ट वगैरह के कई बार जो टाइपिंग में जो है
जी,
हिंदी में बहुत ज्यादा दुश्वारियां हैं, संयुक्त वर्ण है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि अब जब आपने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसको एक सवार रहे हैं तो उसमें कोई बटन कंप्यूटर पे जो है लैपटॉप पे कंप्यूटर पे गलत दब गया, तो उसके कारण किसी शब्द की स्पेलिंग जो है उसकी हिज्जे रॉन्ग हो गई। और टाइम बाउंड काम होता है तो हम लोग भरसक कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं कि उसमें बिल्कुल जीरो एरर हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है तो उसको कंसर्न्ड एमपी, अब किन्हीं का नाम मान लीजिए गलत हो गया
जी,
तो अब वो चूंकि सारी इन प्रक्रियाओं से अवगत नहीं होते, उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि मेरा नाम गलत कर दिया तो इससे कई बार वो मतलब उनको आपत्ति हो जाती है, गुस्सा जाते हैं
जी,
तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं कि अरे आपने तो, आप लोगों ने तो नाम ही गड़बड़ कर दिया मेरा।
तो उसके बाद क्या होता है सर?
तो उसके बाद उसको ठीक किया जाता है, उनसे सॉरी कहते हुए, माफी मांगते हुए कि सर कुछ काम का दबाव था, समय कम था और बहुत सारा काम का दबाव था, तो इस कारण से सर
प्रेशर बहुत होता है,
बहुत काम का सेशन में जो संसद का सत्र चल रहा होता है बहुत अधिक प्रेशर होता है।
okay.
इतना अधिक प्रेशर होता है कि हम लोग अपना खुद निजी काम, जैसे निजी काम भी होते हैं कि बैंक का कोई पेमेंट करना है, कहीं कुछ और करना है, बिजली बिल का करना है, कहीं कुछ और, तो वो निजी काम हम लोग भूल जाते हैं, वो समय से आगे। फिर
नॉर्मली तो लोगों को लगता है कि सरकारी जॉब मतलब रिलैक्सेशन वाला जॉब, आप आराम से अपने सारे काम कर सकते हो।
हाँ देखिए इस, हाँ आपने बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी चीज पूछी इस संबंध में मैं बहुत साफगोई से कुछ बातें कहना चाहूँगा कि देखिए सरकारी नौकरी कह करके लोग एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं, तो सरकारी नौकरी में भी जो जिम्मेदारियां होती है,
एक ही डंडे से सबको हाँक देते हैं, व्हाट अ ग्रेट लाइन सर,
मतलब कि नहीं अच्छा ठीक है क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी कर, अरे ठीक है यार सरकारी कर रहा है ऐसे करके हाँक देते हैं। बट सरकारी नौकरी भी कई तरह की होती है,
राइट,
फील्ड की अलग जिम्मेदारी होती है, जब आप फील्ड में जब पब्लिक डीलिंग करते हैं
जी,
तो वो सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपको एक से एक प्रवृत्ति के लोगों से
मिलना होगा,
आपका सामना होता है
जी,
आपकी कई बार वो लोग आपकी सही बात पर भी गुस्सा जाएंगे क्योंकि वो कहीं से जले भुने आकर जले भुने आते हैं,
आप पे निकाल देंगे
तो वो अपना आपका आप पे निकाल देंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो ऐसी कोई गलत बात बोली नहीं थी, तो फिर क्यों मुझ पे क्यों गुस्सा गया, लेकिन आपको फिर चूंकि आप सरकारी जिम्मेदारी पे हैं तो आपको उससे झगड़ा नहीं करना है
जी,
आप मन महसूस करके रह जाएंगे, खून का घूंट पी के कई बार रहना पड़ता है। मैं पब्लिक डीलिंग जॉब की बात कर रहा हूं, मेरा तो पब्लिक डीलिंग नहीं है जो मैंने देखा है, अब मैं अपने जॉब पे आऊं, हम लोगों की पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको पता है कि पार्लियामेंट में जाने के लिए कई सिक्योरिटी लेयर से गुजरना पड़ता है
जी,
खास करके 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से उत्तरोत्तर सिक्योरिटी में जो है,
उस टाइम आप कार्यरत थे सर वहाँ?
नहीं मैं उस समय नहीं था, मैं उस समय जेएनयू में था।
ओके।
नाश्ता कर रहा था तो मुझे पता लगा अरे संसद पे हमला हो गया है ये वो, तो फिर हम लोग अपने जो हॉस्टल में, उस समय मैं सतलज छात्रावास है जो जेनी नॉर्थ गेट में घुस करके थोड़ा सा आगे जाने पर है, सतलज में था, तो उसमें हम लोग भागे चूंकि संसद के नाम से भागे, कह रहे क्या हो गया हमला,
अभी सिक्योरिटी और टाइट हो गई
तो उस समय। हाँ उसके बाद से तो बहुत ज्यादा, अब तो और अभी और आगे होगी,
तो एम्प्लॉयज के लिए भी मतलब बहुत सारे चेकिंग्स होते हैं।
हाँ एम्प्लॉयज के लिए भी क्या होता है कि हम लोग भी जैसे बैग लेके जा रहे हैं उसकी स्कैनिंग होती है प्रॉपर
जी,
चाहे तो कोई बात नहीं,
छोटी छोटी चीजों पे काफी कड़ी नजर है,
क्योंकि अब देखिए संसद तो हमारे देश में लोकतंत्र है, तो संसद तो लोकतंत्र का प्रतिबिंब है ना, लोकतंत्र का प्रतिनिधि है।
एंड सर अगर मतलब पार्लियामेंट की बात करें, संसद भवन की बात करें, कितने एम्प्लॉइज वहाँ पे वर्किंग है ऑलमोस्ट?
अब देखिए अभी लोकसभा में करीब 2000 प्लस, 2000 से ज्यादा, राज्यसभा में 1500 के करीब।
ओके तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं सर, अगर मेंबर्स की बात करें, एमपीज की बात करें, तो इसमें कितने मेंबर्स?
हाँ एमपी तो देखिए सबको पता है कि लोकसभा में 545 हैं
जी,
जिसमें हमारा जो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है
जी,
उसके दो मेंबर अभी नहीं होते हैं,
उसके दो मेंबर अभी नहीं होते हैं।
वहाँ के लिए अच्छा। जो दो मेंबर्स की सीट है वो अभी नहीं, तो 543 है।
अच्छा अभी क्यों नहीं है सर?
क्योंकि वो हिस्सा अभी पाकिस्तान ने, उस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है,
तो उसके लिए दो सीट अभी भी रखा गया है,
क्योंकि है तो हमारा हिस्सा ना।
ओके,
देखिए हिस्सा तो हमारा है
लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है।
हाँ,
लेकिन उसकी दो सीट्स अभी भी अपने
बिल्कुल
पास?
क्योंकि देखिए हमारा जब हमारे देश का हिस्सा है
जी,
तो वो तो एक उसके भी तो प्रतिनिधि का तो की तो सीट रखी जाएगी
जी। एंड सर उसमें अंदर में काफ़ी सारी बहस होती है, मैंने अमित शाह जी के भी हाथ में देखती हूँ कि एक पेपर होता है, तो वो पेपर में जो ड्राफ्टिंग होती है वो आप लोगों ने कर रखी है?
नहीं नहीं, वो अमित शाह जी की बात आपने की, तो अमित शाह जी हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो जो मंत्री जी होते हैं त्रि महोदय होते हैं, तो उनकी ड्राफ्टिंग उनके अपने उनके जो स्टाफ हैं उनके अपने जो अधिकारी उनके साथ जो अटैच्ड हैं, और जो जरूरत पड़ने पर जो विषय के विशेषज्ञ हैं उन लोगों से सब मिल कर करके तैयार करते हैं।
ओके,
हमारे यहाँ जो काम है हम लोग स्पीकर साहब का जो अध्यक्ष महोदय का है
जी,
उनकी ड्राफ्टिंग हम लोग करते हैं
स्पीकर साहब का
जी।
ओके, तो ड्राफ्टिंग में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आप बता सकते हो सर कि क्या मतलब सबसे ज्यादा आपको बेहतरीन क्या लगा या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए?
देखिए चैलेंजिंग ये होता है स्पीकर किस क्षेत्र से आते हैं, जैसे अभी हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो ओम बिरला जी हिंदी भाषी राज्य है राजस्थान
जी,
वहाँ के हैं, कोटा से हैं। अभी के हमारे अध्यक्ष महोदय अपना अधिकांश क्या लगभग पूरा ही भाषण हिंदी में देते हैं, और ये इस पर निर्भर करता है उस भाषण की भाषा जो है
जी
ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो लक्ष्य श्रोता कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। तो टारगेट ऑडियंस यदि इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो उसकी भाषा थोड़ी संश्लिष्ट होगी, उसकी भाषा थोड़ी उन्नत होगी, लेकिन बिल्कुल ले माइंड के सामने भाषण दे रहे हैं तो उसमें शब्द जो है बहुत साधारण रखने होंगे। और दूसरी एक बात क्या होती है कि आमतौर पे जब आप भाषण देते हैं, भाषण करते हैं, तो उसमें दर्शक को उसको दोबारा सुनने का समय नहीं होता, तो उसकी भाषा उसकी शैली बहुत ही सरल रखी जाती है
कि
जैसे ही सुने
जी,
जो दर्शक जैसे ही सुने उसे उसको समझ में आ जाए
जी,
क्योंकि उसके पास उसको रिसर्च करने का कि पता नहीं ये शब्द बोल दिया, अब मैं डिक्शनरी में देखूं, मैं गूगल में सर्च करूं,
हिंदी ये समय नहीं। बहुत टफ शब्द नहीं यूज कर सकते आप, हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते जिनका मीनिंग नहीं पता होता, बहुत टफ होते, तो मतलब चीजों को बहुत ही मतलब सिंपल रखा।
हाँ, बहुत ही सरल। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि हिंदी में जो टफ की बात है
जी,
तो टफ तो इस चीज पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति विशेष है
जी,
उसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, किस माहौल में हुई है
जी,
किस भाषा में हुई है, उसकी मातृभाषा क्या है, प्लस उसकी उसका अपना शौक क्या है। जैसे मैंने कई अंग्रेजी वालों को भी हिंदी साहित्य पढ़ते हुए खूब देखा है
जी,
हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक होता है, तो यद्यपि वो अंग्रेजी माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन चूंकि हिंदी साहित्य पढ़ने का शौक है इसीलिए उनके लिए हिंदी टफ
नहीं होता है,
उनके लिए हिंदी के बहुत सारे सो कॉल्ड तथा कथित कठिन शब्द भी उनके लिए आसान है।
ओके सर, फिर से थोड़ा पार्लियामेंट में हम लोग एंट्री करते हैं
जी,
तो वहाँ पे अक्सर ये सुनने में आता है मतलब लोगों को कितना कितना समय दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का अक्सर ये कंप्लेन होता है कि ओपोजिशन वाली पार्टी मुझे बोलने का मौका नहीं देती है।
देखिए वहाँ पर क्या है कि जो संसद की कार्रवाई लोकसभा की कार्रवाई में
जी
अध्यक्ष महोदय के साथ सभी दलों के नेताओं की, सभी जो प्रमुख दल है उनके नेताओं की बैठक होती है
जी,
और जो सभा में आगे आने वाले दिनों में जिन जिन मुद्दों पर बहस होनी है या जरूरी समझी जानी है
जी,
तो उन पर अध्यक्ष महोदय उनकी सारे प्रमुख दलों के नेताओं की के साथ बैठक करके उनसे विचार विमर्श करके कहते हैं, पूछते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए
जी।
तो संसद में जो काम होता है वो सारे राजनीतिक दलों के की सहमति से होता है
जी।
ये अलग बात है,
कई बार डिबेट्स भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा।
हाँ, ये बात जरूर है कि सत्ता पक्ष जो होते हैं, सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं
जी,
तो सत्ता पक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन इसमें जो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, वो सारे दलों के नेताओं की बातें सुन करके, उनकी बातों को पर्याप्त तवज्जो देकर, पर्याप्त महत्व देकर करके सारी कार्रवाई का निश्चय किया जाता है, निर्णय किया जाता है
जी।
तो इसमें किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष दल के नेता को कई बार मलाल रह जाता है, या उनको मलाल होता है कि मुझे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया गया
जी,
या मुझे बात रखने नहीं दिया जा रहा है। तो ये मलाल कभी कभी इस कारण भी होता है कि देखिए इतने सदस्य हैं, तो अध्यक्ष महोदय की जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक सदस्य अपनी बात रखें
जी, सबको बोलने का मौका,
सबको बोलने का अवसर, लोकतंत्र है।
जनरली देखा जाता है सर कि अगर कोई बोलना चाह रहा है, लाइक मैं अमित शाह जी का ही मतलब देख रही थी, तो वो अपनी बातें रख रहे थे लेकिन अपोजिशन वाले बीच में बहुत हल्ला मचा रहे थे, तो स्पीकर साहब उन्हें कह रहे थे कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप उनकी बात पूरी होने दें।
जी जी, ऐसा होता है कि वहाँ देखिए क्या है कि संसद की कार्रवाई में सांसदों के बोलने पर कोई रोक टोक नहीं है
जी,
और संसद की कार्रवाई में सांसद जो बोलते हैं उस बात को किसी न्यायालय में किसी में चैलेंज नहीं किया सकता, उनको बोलने की
अनुमति है,
बहुत हद तक स्वतंत्रता वहां प्राप्त है। क्यों? क्योंकि सांसद जो बोल रहे हैं वो लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि हैं
जी।
यदि उनको वहां पर रोक टोक रहेगी, रोक टोक रहेगा, तो फिर जनता की बात वो अपने मन से पूरी तरह से कैसे कर पाएंगे।
तो टाइमिंग का इसमें क्या रोल होता है?
तो टाइमिंग का रोल ये होता है ना कि जैसे कोई बिल जब पेश होना होता है
जी,
तो जो सारे दलों के जो नेता हैं उनके साथ अध्यक्ष महोदय की बैठक होती है, तो उन सब की बात सुन करके उसका एक निश्चित समय तय किया जाता है कि ठीक है ये बफ बिल है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था और बहुत विवादास्पद भी था
जी।
तो उसमें मान लीजिए किसी बिल पर 10 घंटे या 12 घंटे या कुछ ऐसा सब लोगों की सहमति से फिक्स हुआ
जी।
तो चूंकि उसमें उतना समय फिक्स हो चुका है,
मतलब टोटल 10-12 घंटे,
हाँ मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, तो उतना समय फिक्स हो चुका है, तो अध्यक्ष महोदय को देखना है कि उतने समय में अधिक से अधिक सदस्य अपनी बात रख दे। तो इसी कारण कभी कभी कुछ सांसदों को शिकायत रह जाती है
जी,
कि मैं तो बहुत तैयारी करके बोलने आया था, मुझे तो इतना बोलना था, मैंने जितनी बात बोली उसमें मेरी 2-4 बात छूट गई, तो वो चाहते
हैं
हाँ समय कम मिला। तो ये एक स्वाभाविक सी देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य अपने भाषण देने से या कोई काम करने से कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता।
जैसा लोग न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं डिबेट को लेके काफी कम टाइम उन्हें मिलता है, उन्हें ये रिग्रेट रहता है कि मुझे भी बोलने दिया जाए,
जबकि उनको बोलने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं अभी और
फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है, उसका भी रिप्लाई मुझे करना था आपने जो।
तो आखिर कोई तो सीमा होगी ना, जैसे देखिए कोई भी किसी भी सदस्य को अनवरत और बिल्कुल लगातार मन मुताबिक तो बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता।
आप अपने बोलते जाओ, किसी चीज की एक सीमा होती है,
सीमा करनी पड़ेगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को भी ध्यान रखना होता है कि सारे अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने, अपनी बात रखने का मौका दिया जाए
जी,
ताकि जो लोकतंत्र है सही मायने में संसद में भी लोकतंत्र रहे।
राइट,
संसद में भी तो लोकतंत्र रहना है।
बिल्कुल। एंड सर, हम लोग अभी वक्फ बिल की बात कर रहे थे, काफी विवादों से घिरा रहा ये बिल। वैसे तो आप बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा आप काम करते हैं, तो लेकिन अगर वक्फ बिल की बात करें तो बहुत विवादों से था, और इस पे आपकी क्या राय है सर, क्यों इतना विवादों में ये रहा, आप कैसे देखते हैं इसे?
देखिए विवादों में इसलिए भी रहा क्योंकि जो वफ कानून था
जी,
उसमें उस कानून की कई धाराओं से समाज के कई तबके के लोग बहुत असंतुष्ट थे। वफ में ये था कि उसका जो वफ संपत्ति का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट था, वो एक तरह से कई जगह से शिकायतें आती थी कि मनमाना होता था। मतलब जो वफ का जो की जो संकल्पना है इस्लाम में
जी,
उस संकल्पना के आधार पर भी काम नहीं हो रहा था। कई लोगों ने, कई दबंग लोगों ने कई जगहों पर वफ संपत्ति को अपनी आय का जरिया बना लिया था।
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही ऐसा किया था,
कब्जा कर लिया था। तो उसका जो उसकी जो मूल अवधारणा है
जी,
ये उसके खिलाफ था। उसके प्रबंधन से संबंधित कई काफी शिकायतें सरकार के पास आती रहती थी। तो कोई भी कानून हमेशा के लिए मतलब पूरी तरह से उपयुक्त नहीं होता। समय, जिस तरह से समय परिवर्तनशील है,
नए कानून बदलाव करने पड़ते हैं,
तो किसी भी कानून में समय के अनुसार बदलाव करने ही पड़ते हैं
जी।
और तो वफ से संबंधित, वफ कानून से संबंधित भी बहुत सारी शिकायतों को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय किया कि अब इसमें संशोधन करने का समय आ गया है
जी।
तो उस प्रबंधन से संबंधित और भी कई तरह, कई पहलुओं से संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन करने का निर्णय लिया और इस सेशन में वो कानून भी बन गया, पास हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के फिर राष्ट्रपति महोदय के महोदय के
साथ। सरकार ने क्या संशोधन किया सर?
इसमें एक तो था कि वफ कानून में था कि वफ बोर्ड जो था वो किसी भी संपत्ति को, यदि उसको उसको लगता था कि ये संपत्ति वफ की है,
ये संपत्ति आप मुस्लिमों की, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की बात कर रहे हैं राइट?
नहीं, किसी की भी संपत्ति,
किसी की भी संपत्ति
कि ये वफ की है, तो उसको वफ संपत्ति घोषित कर देता था। तो इसमें कई पक्षों को, कई समुदाय के लोगों को शिकायत आती थी कि नहीं, ये तो हमारे पास इसके पुख्ता कागजात हैं, तो ये तो हमारी संपत्ति है
जी,
तो ये वफ की कैसे हो गई
राइट।
तो इस तरह से कई सारे विवाद बढ़ रहे थे, तो इस कारण से सरकार ने कहा कि अब
हमें कुछ करना चाहिए। हाँ,
अभी तक जितने जितनी भी आपत्तियां आई हैं उन सब पर संयुक्त संसदीय समिति सरकार ने बनाई
जी।
संयुक्त संसदीय समिति ने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने इस पे काफी दिन तक चर्चा की। उसके बाद उस चर्चा में जो बातें उभर कर आई उन सबको समाहित करते हुए
जी,
सरकार ने संशोधन का स्वरूप तैयार किया।
जैसे आपने संसद भवन की हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें आपने कहा लोकतंत्र का भी रहना बहुत जरूरी है, सारी चीज़ें बैलेंस वे में चलना बहुत जरूरी है, और वो काफ़ी मर्यादित जगह भी है राइट। आपको मर्यादा के रूप में ही आपको रहना होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विपक्ष के लोग या किसी समुदाय के लोग बिल को फाड़ देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये लोकतंत्र का या संसद भवन का अपमान होता है?
अब देखिए, सरकारी अधिकारी होने के नाते
जी
मैं ये एक बहुत विवादास्पद मुद्दा है जो आपने पूछा
जी।
सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हम सब लोग व्यक्ति हैं
जी,
हम सबके अपने व्यक्तिगत आवेग संवेग हैं
राइट।
कई बार हम भावना में इतने बह जाते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो व्यवहार हमारा जो नहीं होना चाहिए, स्थान को और विषय को, माहौल को देखते हुए, तो उस तरह की भी हरकतें हमसे हो जाती हैं
जी, जो व्यवहारिक नहीं है,
जो मर्यादित नहीं कही जाएंगी
जी,
नहीं कही जाती हैं। तो जब ये चीज़ें हो जाती है तो जो इस तरह का व्यवहार करते हैं उनको खुद अफसोस होता है कि मैंने भावना में बह करके ऐसे कर दिया जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी
जी।
तो संसद सदस्य भी आम जनता के बीच से ही चुने जाते हैं,
राइट,
लेकिन चुने जाने के बाद वो विशेष हो जाते हैं क्योंकि वो लाखों लोगों के प्रतिनिधि हो जाते हैं,
राइट,
लाखों लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाना और लाखों लोगों के काम करवाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, सांसद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
जी।
तो कभी कभी भावना में बह करके
तो आपको सर यहाँ पे
थोड़ी सी उनसे ऊंच नीच हो जाती है मैं कहूंगा थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है जिसका उनको खुद अफसोस होता है।
लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आप जब इतने लाखों जनता का प्रतिनिधि कर रहे हो तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे वहां पे आप बैठे हुए हो बहुत जिम्मेदारियों के साथ।
ठीक है, ये बिल्कुल जो आम लोगों की जो अपेक्षा है संसद सदस्यों से कि बहुत मर्यादित आचरण होना चाहिए, कि अपेक्षा बिल्कुल सही है, लेकिन संसद सदस्य भी, मैंने पहले भी कहा कि संसद सदस्य भी व्यक्ति ही हैं
जी। तो सर आप कोई कितने साल से कार्यरत हैं?
मैं लगभग 21 साल से।
21 सालों में सर कुछ मैं चाहती हूँ कि आप कुछ पार्लियामेंट की कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएं जो मतलब नॉर्मल जनता नहीं देख पाती है
संसद की जो कार्रवाई जो प्रसारित होती है वो तो लोग देखते ही हैं
जी।
बाकी ऐसे जो हम लोग का कभी कभी इंटरेक्शन होता है, तो कई बार जैसे नए संसद सदस्य आते हैं, पहली बार चुन के आए हैं, तो उनको कई चीज़ें मालूम नहीं होती, तो वो कई बार जानकारी लेने के लिए हम लोग के ऑफिस में, मतलब हमारे कमरे में जो शाखा का जो कमरा है उसमें भी कई बार
जी
चले आते हैं। तो हम लोग भी उनका पर्याप्त सम्मान करते हैं, हम लोग भी ये समझ कर कि चूंकि ये महोदय पहली बार संसद सदस्य बने हैं तो इनको कई चीज़ें मालूम नहीं है, तो हम लोग उनको बहुत ही सम्मान से बैठा करके उनको उनकी जो भी जिज्ञासा होती है, उन्हें जो भी जानना होता है, हम लोग उनको बताते हैं और हर संभव सहायता जो हम लोग कर सकते हैं।
तो उस टाइम क्या मतलब क्वेश्चंस क्या रहते हैं उनके, क्या जानकारियां चाहिए होती उन्हें?
मैं प्रश्न कैसे पूछूं, मैं एमपी तो बन गया तो मेरा कोई अनुभव भी है नहीं, तो मैं प्रश्न कैसे पूछूं, आप बताइए कि किस तरह के। तो हम लोग उनको क्वेश्चन दिखाते हैं कि देखिए सर इस तरह के प्रश्न जो है ये आप देखिए, इस तरह के प्रश्न इस शैली में पूछे जाते हैं
जी।
तो आप बताइए कि आपको किस विषय पे पूछना है
जी।
तो वो बताते हैं कि देखिए ये विषय है हमारा ये, तो हम लोग उनको एक आउटलाइन टाइप का एक बता देते हैं कि सर इसमें ऐसे ऐसे करके सवाल हो सकते हैं और उनका जो, या वो जो बताते हैं तो इसको ऐसे सर प्रेजेंट कर सकते हैं, वो मतलब हम लोग उनकी भरसक सहायता करते हैं।
तो ये कहा जा सकता है कि जो ऑन मतलब स्क्रीन देखते हैं हम लोग हमेशा न्यूज़ वगैरह में जो आप बोल रहे प्रसारित होता है उसके पीछे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और बहुत ज़्यादा योगदान है।
हम लोग की नियुक्ति ही इसी के लिए होती है, हम लोग संसदीय संसद की जो कार्यवाही है वो कितनी अच्छी तरह से चले
जी
और उसमें कितनी गुणवत्ता हो, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो
जी।
तो इन सब सारे पहलुओं के लिए हम लोग जो संसद में भी जो भी काम कर रहे हैं हम लोग कोई कोर कसर अपने तरफ से नहीं छोड़ते
जी। तो सर आपका राहुल गांधी के साथ भी इंटरेक्शन होता होगा?
नहीं, हम आमतौर पे हम लोगों का सांसद महोदय के साथ जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं के बराबर होता है
ओके।
क्योंकि हमारा टेबल वर्क ज़्यादा है, कभी कभी जैसा मैंने बताया कि कभी कभी शाखा में आ जाते हैं
जी।
तो उनको जब आ गए हैं और उनकी जिज्ञासा है, उनको कुछ पूछना है, उनको कुछ जानना है, तो उसके
तो
बारे में
मिलना जुलना हुआ उनसे सर?
नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी से कभी मिलना नहीं हुआ।
ओके, तो कोई ऐसे नेता जिनके साथ आपका बैठक हुआ, मिलना जुलना हुआ, कुछ जानकारियां एक्सचेंज हुई?
जी, पिछली लोकसभाओं में थे तो उनके साथ किसी ने मुझे कहा कि मैंने आपके बारे में सांसद महोदय को बताया है, तो आप क्यों नहीं जाते हैं उनसे मिलने? तो मैंने उनको कहा कि देखिए, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के लोगों की, कि मुझे बड़ा संकोच होता है कि वो क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारियों के लिए लगातार बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और तो मैं यदि उनसे मिलने जाऊँगा तो मुझे थोड़ा सा एक अपराध बोध जैसा होता है कि उनके क्षेत्र के लोगों का कुछ समय मैं, जो उनको मिलना चाहिए उनके क्षेत्र के लोगों के लिए है,
आपने कंज्यूम कर लिया
वो मैं, मतलब इसलिए मैं जल्दी मिलने जाना नहीं चाहता।
नाम क्या है सर उनका?
एक सदस्य थे जो बिहार से थे, मंगनीलाल मंडल जी।
जी,
तो उनके बारे में उनके कुछ जानकार जो थे, बहुत क्लोज थे, वो मेरे भी क्लोज है, तो उन्होंने कहा।
आप भी बिहार से हो सर?
जी जी,
मेरे भी रूट्स बिहार से ही है।
तो उसमें मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा भी कि जो मेरे मित्र ने जिनका नाम लिया, कि उन्होंने कहा कि फला बाबू ने तो आपके बारे में कई बार कहा, आप तो आते ही नहीं हैं आप तो मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर, आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं।
मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आएगी। जैसे आपने कहा फलना बाबू ने, तो ये जो फलाने
बाबू,
हाँ, तो ये हमारे बिहार में काफी प्रचलित शब्द है
कि सर, आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो आपके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप उन सब लोगों के, जो आपका 5 साल का निश्चित कार्यकाल है,
जी,
उन सब लोगों की अपेक्षा आकांक्षा पे खड़े उतरे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप खुद इतना इन जिम्मेदारियों के निर्वहन में इतना व्यस्त रहते हैं कि मुझे थोड़ा अपराध बोध होता था कि मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझसे बातचीत करेंगे, कोई मेरा ऐसा काम तो है नहीं
जी।
और आप मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि भी नहीं हैं कि मेरा, मैं बिल्कुल हक से आपके पास आऊँ कि हाँ, आप मेरे प्रतिनिधि हैं तो क्यों नहीं आप मेरा काम कीजिएगा, क्यों नहीं मैं आपके पास आऊँ। तो इसलिए मैं बड़ा संकोच बस नहीं आता था कि वहाँ के प्रति जो है जनता का, वहाँ के लोगों का कुछ समय मैं बर्बाद कर दूंगा।
तो बातचीत फिर सही हुई उनके?
हाँ, तो बातचीत हुई और बहुत देर तक बात। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अरे आपका तो इतनी बार नाम लिया आप मैं तो खुद ये करता था कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा संसद सदस्यों से मिलने के मामले में संकोची हूँ, मैं जल्दी मतलब मिलता ही नहीं हूँ।
सर, मेरे जो फेवरेट है, मतलब लोगों को काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ एंड हीरोज से मिलने का शौक है, मुझे मोदी जी से मिलने का काफ़ी शौक है, तो आपका उनसे कभी इंटरेक्शन हुआ कि नहीं सर?
नहीं, कभी नहीं हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद है ना कि प्रधानमंत्री जी जब संसद में भी आते हैं
जी,
तो उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सब कुछ होता है, तो कोई भी ऐसे उनसे कभी भी नहीं मिल सकता
जी। तो कभी देखना, कभी उनकी कोई पर्सनालिटी जो आप बताना चाहें?
हाँ, देखने का अवसर मुझे मिला है
जी,
देखने का अवसर मिला है। बल्कि एक इस संबंध में एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी,
जी
बहुत ही विद्वान, बहुत ही
पढ़े लिखे,
काबिल, बहुत ही उम्दा शख्सियत।
आई एग्री।
तो एक बार क्या हुआ कि अभी तो मैं पुराना संसद भवन कहूंगा, उन दिनों वही संसद भवन था
जी।
अभी वो संविधान सदन, पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन हो गया। तो एक बार जो उसका जो केंद्रीय कक्ष है
जी,
उससे सटे कॉफी बोर्ड है, तो वहां पे कॉफी पीते हैं। तो एक बार मैं 2-3 दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था
जी,
तो मेरा चेहरा जो है वो कॉफी में ले रहा था और कॉफी वाले से बातचीत कर रहा था, कॉफी पी रहा था, कॉफी वाले से बातचीत कर रहा था। कॉफी जो वहाँ सर्व करते हैं। उसी बीच क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां से
क्रॉस कर रहे थे,
क्रॉस कर गए
जी,
कर गए। तो अब चूंकि मैं उस तरफ मेरी पीठ थी
जी,
मैं स्टाफ से बातचीत कर रहा था, तो जब क्रॉस कर गए तो फिर मेरे दोस्त ने, जो दो दोस्त भी साथ में पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे उपेंद्र जी अभी तो, अरे डॉक्टर साहब अभी तो पीएम गए बगल से, अभी पीएम गुजर गए। तो फिर मैं इधर मुड़ा, मैंने कहा यार मैं तो इधर मुंह किए हुए था, मैं तो बातचीत कर रहा था
जी जी।
मैंने कहा कि ओहो मैं तो मिस कर गया। तो ये एक बड़ा रोचक है कि प्रधानमंत्री जी गुजर गए,
पीएम मींस देश का राजा बोल लो, जैसे पहले के
प्रधानमंत्री जी वहां से क्रॉस कर गए
जी,
वहां से गए और मुझे पता भी नहीं लगा।
पहले के टाइम में राजा जब आने वाले होते तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाता था कि वो आने वाले हैं सभा में।
हाँ,
तो ऐसा कुछ होता तो शायद आपके साथ ये नहीं होता।
नहीं नहीं, उसका कारण ये रहा कि जो केंद्रीय कक्ष के पास जो कॉफी बोर्ड है उसमें बहुत सीमित लोगों की एंट्री होती है, स्टाफ में भी सब लोग नहीं जा सकते, वहाँ
उच्च अधिकारी जा सकते
हैं। और जिनका जो है संसदीय गतिविधियों से एकदम प्रत्यक्ष रूप से लेना देना है
जी,
या CPWD के स्टाफ जो कि मरम्मत वगैरह ये सब वो तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ व्यवस्था करनी है, ये बाकी सब लोग नहीं जा सकते।
सर मोदी जी की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताएं, ऐसे तो हम सब उन्हें जानते हैं लेकिन आपने करीब से देखा है उन्हें।
और हमारे प्रधानमंत्री जी की शख्सियत तो इतनी उम्दा है कि उनके बारे में तो कुछ भी कहना एक तरह से सूर्य को दिया दिखाने के समान है। उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रेरणा लेता हूँ, कि हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वो अनवरत काम करते रहते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं। और यही नहीं बल्कि मुझे कुछ लोगों से पता चला कि जब वो विदेश जाते हैं
जी,
तो विदेश में भी फ्लाइट का कुछ इस तरह का एक रखते हैं, शेड्यूल इस तरह का रखते हैं कि उसमें भी वो मैक्सिमम समय फाइल वगैरह निपटाने, मतलब वो देश के काम के लिए उस मैक्सिमम समय देते हैं,
मतलब उस टाइम को यूटिलाइज करते
हैं, उस टाइम को भी वो अधिकतम उसका उपयोग करते हैं
जी,
क्योंकि उनमें जो जज्बा है और उनका जो व्यक्तित्व है
जी,
और खास करके जो उनमें जो एनर्जी लेवल है उनका
जी,
उनका एनर्जी लेवल तो असाधारण है, बिल्कुल
बिल्कुल
एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं खुद कई बार थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, थक जाता हूँ, कभी कभी होता है ऐसा
जी जी,
तो उनके बारे में जब ध्यान आता है तो उनका नाम याद आते ही, उनके बारे में ध्यान आते ही जैसे लगता है कि मुझ में जो है एक नई उमंग का एक समावेश हो जाता है
जी जी जी,
लगता है कि नहीं ओह नहीं 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 थका नहीं हुआ, अभी और काम करना चाहिए।
वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं, वो विदेश से भी आते तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में जाके लग जाते हैं, वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा रेस्ट लेते हैं वो।
नहीं बहुत कम, अच्छा वो योग करते हैं तो बहुत ही, मुझे मैंने उनके बारे में जो सुना है बहुत ही कम सोते हैं, मतलब वो अपना समय जो भी अधिकतम समय जो हो सकता है
जी
वो देश के लिए देते हैं।
आई एग्री सर, मोदी जी एंड योगी जी बोथ आर माई फेवरेट, दोनों मुझे काफी पसंद है।
हाँ, योगी जी का भी एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है, और योगी जी की जो बात मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है
जी,
कि वो बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेते हैं।
राइट,
वो यदि निर्णय जनता के लिए सही है
जी
तो सही है, फिर उस निर्णय का समाज के किस वर्ग पर किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
या उनकी खुद की कुर्सी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा,
या खुद उनके पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वो परवाह नहीं करते
जी।
एक बार जब वो बिल्कुल सारे प्रोस कॉन्स पर विचार करके जब एक बार जब संबंधित पक्ष से सलाह मशविरा करके निर्णय ले लेते हैं तो फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करते।
राइट।
और प्रशासक के रूप में उनके इस गुण को मैं बड़ा पसंद करता हूँ।
जी जी, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है सर। संसद की कैंटीन पर भी आते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जैसे पक्ष विपक्ष दोनों लोग जाते होंगे तो वहाँ पे क्या माहौल रहता है आफ्टर बहुत बड़ा डिबेट?
देखिए क्या है कि हमारे देश में लोकतंत्र है
जी,
तो कई दल हैं, उन सबकी अपनी विचारधाराएं हैं।
राइट।
उन सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं।